कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तविंद, दामोदर देश भक्तविंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत के प्रार्थना के धारावाहिक सत्संग में सबका हार्दिक स्वागत है। हम पहले स्कंद भागवत के 9वें अध्याय के अंतर्गत महाजन पितामह भीष्म के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 40वें श्लोक में भीष्म पितामह गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करते हुए उनके उनको प्रार्थना करके अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान की महिमा गा रहे हैं। ये श्लोक कल हमने पढ़ा था। ललित गति विलास वल गुहास प्रण्य निरीक्षण कल्पितृ माना कृतम मनो कृतवत्यवनमादंदा प्रकृतिम अगम कील यस्य गोप वध्वा। तो इसमें पांच ग्यारह अध्याय के पांचों अध्यायों को इस श्लोक में भीष्म पितामह ने ऐसे प्रो दिया है, समा दिया है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित हो जाए, श्री कृष्ण के ऊपर आविष्ट हो जाए। कौन सा कृष्ण? जिस कृष्ण के सुंदर मुख का मुस्कान, मुस्कुराहट, जिससे गोपियां रासलीला में वैसे ही भगवान के साथ नृत्य पद न्यास मुस्कुराहट, जैसे भगवान के गुण वैसे गोपियों के गुण थे, ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों से जो पूजित भगवान है, उन भगवान के ऊपर मेरा मन केंद्रित हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मनोहर मुस्कान से, पदन्यास से, चितवन से गोपियों का पूजन हुआ जैसे, और गोपियों के ऊपर इतनी कृपा हुई कि गोपियों में कृष्ण के ही सब गुण, कृष्ण के साथ रास में वैसे ही चरण चलाना, वैसे ही मुस्कुराना, वैसे ही गाना, तो सभी गुण सामान्य भगवान ने उनको दे दिए। ऐसे लगता है कि बड़ा आश्चर्य है कि गोपियों और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह गया, और वो कृष्ण के लीलाओं का अति प्रेम के उन्माद में अनुकरण करने लगी। अब यहां प्रश्न ये उठाते हैं भीष्म पितामह कि भगवान आप सर्वशक्तिशाली हो, सर्वव्यापक हो, अर्जुन भाग्यशाली है कि आपके प्रेम का पात्र है, आप उसके सारथी बने हो, परंतु इससे भी ऊपर आपके प्रेम का मुझे परिचय है। गोपियों के प्रेम के तो आप वश में हो जाते हो, और उनको तो आपने सब अपने गुण दे दिए, उनका प्रेम अर्जुन के प्रेम से भी महान है। उन गोपियों के स्थान की तो इच्छा करने के लिए भी साहस चाहिए, कोई सामान्य व्यक्ति उसके प्रेम की इच्छा भी नहीं कर सकता है। ऐसे संतों में कहावत है, ललिता सखी की उपासना जैसो शेरणी को दूध। शेरणी का दूध आपने कभी देखा है? सुना भी नहीं है। या रहे सोने के बर्तन में, या शेर के बच्चे के पेट में। शेरणी के दूध को रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, नहीं तो शेर का बच्चा ही पी सकता है। तो ऐसे गोपी के भाव की उपासना वही कर सकते हैं जिनके ऊपर गोपियों की कृपा हो, या स्वर्ण पात्र भगवान किसी के ऊपर भगवान कृपा करे। तो ललिता सखी की उपासना जैसे शेरणी को दूध, ऐसे ये कहावत है संत समाज में। तो यहां भीष्म पितामह ऐसे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये उनका भाव है। ठीक है, बहुत अच्छा है, उनका प्रेम महान है, परंतु मेरा तो अंत समय में इसका स्मरण मैं कर रहा हूं ताकि मेरा लक्ष्य जो है पार्थ सारथी कृष्ण वो प्राप्त हो जाए। कैसे हैं श्री कृष्ण? वो बड़े सर्वकला समर्थ हैं, बड़ी अद्भुत कलाएं उनको नृत्य की आती हैं, रास का अद्भुत नृत्य है। एक गोपी एक कृष्ण और सबके साथ ऐसे नृत्य कर रहे थे, और नृत्य के साथ उनके जो जो मन के जो जो मन में भाव उदय होते हैं, जो मुख के ऊपर उनके अनुस्वार, क्या मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्या आंख का तिरछा चितवन होना चाहिए, ये जो है ये भगवान का जो लीला है इसको कहते हैं धीर ललित। जैसे अर्जुन के सारथी को पार्थ सारथी कहते हैं, ऐसे रास विहार करते हैं तो कृष्ण को कहते हैं धीर ललित। एक धीर शांत भी है। ये धीर ललित का अर्थ है जो बोलने में चतुर और हंसी मजाक के साथ गोपियों के साथ मनोहर लीलाएं करे वो धीर ललित है। ललित का मतलब सबको ललचाने वाला, अपने ओर आकर्षित करने वाला। और गोपियों का पूजन भगवान के ऐसे सुंदर कला से होता हो रहा था, हो रहा है। उन गोपियों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने उनके अंदर अपने सारे गुण ऐसे डाल दिए कि वो कृष्ण को प्रसन्न कर सके। इसलिए उनका प्रेम अति उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुण उनको दे दिए। ऐसे भागवत में लिखा है कि गोपियों ने कोई प्रयास नहीं किया मेरी कृपा से, मेरे संग से उनके अंदर ये सब अद्भुत गुण। नृत्य करने के लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखने नहीं गई, गाने के लिए कहीं से बाजा सीखा नहीं, भगवान की कृपा से ये सब भगवान ने उनको दे दिया। ये जो प्रेम है अर्जुन का, जो भगवान पार्थ सारथी बने या उनका संदेश वाहक बने, उसमें क्या दोनों तरफ से कुछ संकोच था, परंतु गोपियां और भगवान के प्रेम में कोई संकोच नहीं है। ये निसंकोच केवल मधुर्य स्तर का प्रेम है। और दोनों का बराबर का भाव है, एक छोटा एक बड़ा है ऐसा भाव नहीं है। और रासलीला में विशेष रूप से अनुकृत्यवत्य गोपियां वैसे ही कर रही थी जैसे कृष्ण कर रहा था। जैसे कृष्ण का जहां पांव पड़े वैसे गोपी का पांव, जहां कृष्ण का हाथ मुड़े वहां गोपी का हाथ मुड़े, जहां कृष्ण की चितवन पड़े वहां गोपी की चितवन पड़े, तो वैसे ही वो कर रही थी। इनको सिखाने के लिए कोई विद्या की जरूरत नहीं थी, भगवान की कृपा से ये सब गुण उनमें आए गए। इनको अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बड़ा उन्माद अंध, ये अति प्रेम भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। और ये कील का मतलब ये बड़ा आश्चर्यजनक है, कैसे ये संभव है? ये अर्जुन के पास नहीं थे, भगवान ने अर्जुन को अपने जैसा सारी कलाएं नहीं दी, लेकिन गोपियों को तो सारी कलाएं वैसी की वैसी दे दी। और कृतम का अर्थ है जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण आदि किया और गोपियां इसी का नकल करने के लिए तैयार हो गई कि हम गोवर्धन उठा लेंगी। तो ये है उन्मद, कभी कभी उन्माद प्रेम के कारण भगवान का नकल करती है। भीष्म देव जी का इस भाव को चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये तो बहुत ऊपर का भाव है, परंतु मैं बीच में हूं, इतना ऊपर के स्तर का नहीं हूं, मैं दास भाव का भक्त हूं, मैं तो पार्थ सारथी की सानिध्य, पार्थ सारथी का सानिध्य उनकी नित्य लीला में प्रवेश करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रज अंगनाएं, ब्रज की गोपियों और भगवान श्री कृष्ण में एक प्रकार का एकत्व था। एकत्व का मतलब है दोनों के भाव समान थे, और हो भी क्यों नहीं, कृष्ण से राधा रानी की उत्पत्ति और राधा रानी से सारी गोपियों की उत्पत्ति। जो राधा रानी के मन में वो गोपियों के मन में, जो गोपियों के मन में वो राधा रानी के मन में, और जो कृष्ण के मन में वो राधा रानी के मन में, क्योंकि एक ही है, दो नहीं है। राधा कृष्ण एक तनो है, ऐसे लिखा है चेतन चात्म, दोनों एक हैं, दो नहीं है। श्री प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं राधा एंड कृष्ण इज गॉड, आर गॉड नहीं। एक भगवान का मातृभाव माता भाव है, एक पिता भाव है। राधा है जगतेर माता, तो जो इच्छा राधा रानी के मन में आती है वो गोपियों के मन में आएगी, जो भाव श्री कृष्ण के हृदय में है वो राधा रानी के हृदय में, तो ये और राधा रानी के हृदय में आती और प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द लिखा है कि क्वालिटेटिव वननेस, उनके गुणों में समानता आ गई थी। कैसे गुण, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक दूसरे से हास परिहास करना, आलिंगन करना, नृत्य करना, इस सब में दोनों समान थे। अर्जुन और कृष्ण का संबंध बड़ा सराहनीय है, परंतु गोपियों के साथ जो कृष्ण का संबंध है वो परिकाष्ठा है। भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी को जब गिनती करते हैं, ये श्रील सनातन गोस्वामी पाद के ब्रज भागवत अमृत में धरती के ऊपर भक्तों से लेकर पांडवों से लेकर हनुमान जी से लेकर सारे देवताओं से लेकर, देवता इंद्र से लेकर ब्रह्मा जी से शंकर से लेकर उद्धव तक पहुंचते हैं, उद्धव कहते हैं गोपियां और गोपियां कहती हैं राधा रानी। तो ये जो हरे कृष्णा, सो क्या लिखा है भक्त किसी ने, दिनेश कुमार, हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निश्चित रूप से अर्जुन का सौभाग्य है कि भगवान सारथी बने हैं, लेकिन गोपियों को तो साक्षात कंधे के ऊपर उठाने के लिए राधा रानी को तो कहा कंधे के ऊपर चढ़ जाओ। तो ये भगवान श्री कृष्ण की यहां भीष्म पितामह जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें परम पवित्र गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, वो तो प्रेम की मूर्ति है। भगवान की कृपा से अर्जुन सौभाग्यशाली था, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको मित्रता भगवान के सखा का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका भगवान सारथी बने, परंतु गोपियां तो भगवान के साथ एक हो गई। एक हो गई का मतलब है राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और सारी गोपियां राधा रानी का काया व्यू है। काया व्यू का मतलब एक राज, जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला में एक से अनेक हो जाते हैं, ऐसे राधा रानी अपनी एक से अनेक गोपियां बनती हैं कृष्ण के रास में रस आस्वादन देने के लिए। वो स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है, वो भगवान की शक्ति है और भगवान के प्रेम की परिकाष्ठा का परिचय है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भीष्म देव गोपियों के भाव की स्मृति कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनकी कृपा को, अंत समय में उनकी कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम कार्तिक महीने में नमो राधिकाय त्वदीया प्रिया है राजा रानी की वहां प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहा था, तो यहां गोपियों को प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रेम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि भगवान क्यों ऐसे कर रहे हैं भीष्म देव, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रेमी भक्तों की कोई महिमा गाता है, उनके गुणगान करता है। इसलिए भीष्म पितामह केवल अजय अर्जुन के लिए विजय सखा आदि नहीं कहा, जो उनके सामने पार्थ सारथी के रूप में भगवान खड़े थे, परंतु वो गोपियों के प्रेम के भगवान के साथ जो लीला था उसका भी स्मरण कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमने यहां लिख दिया है कि कृष्ण और गोपियां एक हो गई, इसका अर्थ सायुज्य नहीं समझना चाहिए कि गोपियां भगवान में मिलके एक हो गई, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए। गोपियां प्रेमी हैं और भगवान, गोपियां प्रेम करने वाली हैं और भगवान उनके प्रेम का नायक है और गोपियां नायिका हैं। अब भीष्म देव को भगवान श्री कृष्ण के युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जो अगर पूजा हुई थी, प्रथम सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पूजा हुई थी, उसकी स्मृति आ रही है। मुनिगण नृपवार्य संकोल अंत सदस्य युधिष्ठिर राजसूय अहरणं उपपेदक्षण मम दृषि गोचर एषा विरात्मा। मुनिगण, वहां सब प्रकार के मुनि थे, सब ऋषि मुनि आए थे, नृपवरे और सब महान राजा पूरे पृथ्वी के आए थे, पृथ्वी के सारे ऋषि और राजा जहां पधारे थे। कहां आए थे? वरे का मतलब है श्रेष्ठ, संकुल का मतलब जहां समाज कठा हुआ था, अंत सदस्य जहां बड़ा राजाओं महाराजाओं महामुनियों ऋषियों का जहां बहुत बड़ा समाज कठा हुआ था। कहां यह समाज हुआ था? युधिष्ठिर राजसूय, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के समय। एशाम, एशाम वो सारे बड़े बड़े राजकुल के और ऋषि कुल के महात्माओं के बीच में अरणम, अरणम का मतलब पूजन, पूजा की गई, अगर पूजा की गई। उपेत उपपेदा अक्षण्यो, मेरे आंखों से मैंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पूजा, अगर पूजा को देखा था। मम दृषि गोचर, और वही जिसकी मैंने अगर पूजा देखी थी आज मेरे आंखों के सामने मेरे अंत समय खड़े हैं। आविरात्मा, एष आविरात्मा, उसमें मेरा मन पूर्ण रूप से तलीन हो जाए, उसकी स्मृति में तलीन हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं राजसूय यज्ञ जो महाराज युधिष्ठिर ने किया था, उस बड़ी सभा के अंदर जहां सारे ही महाराजा महर्षि मुनिगण बैठे हुए थे, बड़े विद्वान जहां बैठे हुए थे, उस सभा में भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पृथ्वी के ऊपर कौन है ये जब पूछा गया, तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा इस कृष्ण के अतिरिक्त कोई उधार और महान धरती के ऊपर नहीं है। तो भीष्म पितामह ने कहा मैं समर्थन करता हूं। उस वक्त शिशुपाल ने इसी समय में कृष्ण के ऊपर बोलना शुरू किया, और जब 100 शब्द पूरे हुए तो शिशुपाल का श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दिया, और सुधा शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण के चरण में प्रवेश हुआ। सबने ये देखा, और ये सारा भीष्म पितामह कहते मेरे आंखों के सामने हुआ, मेरी उपस्थिति में हुआ, मैं उसको याद कर रहा हूं, और वही कृष्ण आज मेरे सामने है, मेरा मन पूर्ण रूप से इनमें लग जाए। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मेरे जीवन के नाथ, मेरे मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, आविर आत्मा मेरे प्राणनाथ। जिसका ही दर्शन करना चाहिए। कैसे है? और जिसकी पूजा तो बड़े संत और महाराजाओं के बीच में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हुई थी, वो तो सबके लिए पूजन्य है और सबके लिए दर्शन्य है, और आज मेरे को अंत समय दर्शन देने आए, अब मेरा मन पूर्ण रूप से इनमें तलीन हो जाए। चक्रवर्ती बात करते हैं, भीष्म पितामह अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा मैंने अपने आंखों से देखी थी, और उस समय सारे संत साधु कह रहे थे क्या सुंदर है श्री कृष्ण, क्या महान है, क्या सर्वशक्तिशाली है, सब लोग जय जयकार कर रहे थे, और इतना बड़ा समाज ऋषि मुनियों का था, राजा महाराजाओं का था, बड़ा राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज का हो रहा था, वहां भगवान ने इस पूजा को स्वीकार किया था। अब मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे प्राणनाथ, मम आत्मा मम प्राण, मेरे प्राणनाथ जो मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, जो मेरी इच्छा को पूरा किया है, अंत समय मुझे दर्शन देने आए हैं, इसमें तलीन हो जाए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के विजय के उपरांत महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहयोग से बहुत बड़े धन से बहुत बड़ा महान राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, और यज्ञ का घोड़ा उसमें छोड़ा जाता है और सब दिशाओं में घोड़ा जाता है, जो राजा रोकता है उसको युद्ध करना पड़ता है, और नहीं तो महाराज का कहा जाता है राजसूय यज्ञ करने वाला जो है वो एक क्षत्र पूरी पृथ्वी का राजा, जिसको कहा जाए सम्राट के रूप में स्वीकार करता है। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने भी पूरी धरती के ऊपर अपने घोड़े को रवाना किया था, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजा था कि भैया आप क्या करना चाहिए। उसी समय श्री कृष्ण के पास कोई हजारों राजकुमार जरासंध के जेल में थे, उनका पत्र आया कि हमें मुक्त कराओ, और द्वारका में इस बात के ऊपर बहुत बड़ा दो दल हो गए। भीमसेन के बलराम जी कह रहे थे हमारा शत्रु जरासंध, उसको मारने का मौका मिला है, हमको पहले उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। उद्धव कहने लगे हमारे पांडव हमारे अपने सगे हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके राजसूय में यज्ञ में जाना चाहिए पहले, और राजसूय यज्ञ के घोड़े को जरासंध रोकेगा तो उसके मारने के लिए कोई रास्ता निकल आएगा। तो भगवान ने उस समय उद्धव की सलाह को माना था, और फिर कैसे भगवान ने जरासंध के वध को बिना लड़ाई के अर्जुन और भीम के साथ उधर जाके किया था, और फिर सब जब राजकुमार मुक्त कराए जरासंध के बंद से, जेल से, और जरासंध की राज गदी के ऊपर उनके बेटे सहदेव को बिठाया और कहा इन सब राजाओं को वस्त्र आभूषण भेंट दे के विदा करो, सबने कहा हम जाएंगे नहीं, हम आपके साथ राजसूय यज्ञ में चल रहे हैं। तो वो सब राजसूय यज्ञ में आए थे, और उस यज्ञ के अंदर जब यज्ञ का पूर्ण आहुति का समय होता है तो अगर पूजा का नियम होता है, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा यज्ञ करने के लिए जो धन चाहिए वो संभव नहीं है, यज्ञ कराने वाले पंडित चाहिए वो भी संभव नहीं है, कलयुग में तो ये सोचा नहीं जा सकता। कौन कौन आए थे वहां, प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़े बड़े दार्शनिक आए थे, धर्म के महात्मा आए थे, बड़े बड़े जो है फिजिशियन बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य आए थे, बड़े वैज्ञानिक आए थे, बड़े संत महात्मा आए थे। प्रभुपाद ने फिर एक बात लिखी है कि ये सब है या तो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, एक तो राजकुल है और एक ऋषि कुल है, तो इन दोनों का महत्व होता था, और वैश्य और चतुर्थ वर्ण शूद्र को विशेष रूप से कोई बड़ी सभा में नहीं बुलाया गया था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, कल युग में अब ये वर्णों की मर्यादाएं उल्टी हो गई। अब जिसके पास धन है, व्यवसाय के पास, उसका ही नाम चलता है। ब्राह्मण साधु समाज में साधुओं का उतना महत्व नहीं रह गया जितना धनी लोगों का रह गया, जितना श्रमिक लोगों का रह गया। तो ये प्रभुपाद जी एक टिप्पणी लिख रहे हैं कि सारी वर्ण आश्रम व्यवस्था कैसे उल्टी हो गई है। और फिर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई, जो श्री कृष्ण जिसको भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से देखा था, उसी का स्मरण कर रहे हैं, उसी रूप को और उसी पूजा का ध्यान कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्यान तो भगवान के सुंदर रूप का करना चाहिए। निराकार ध्यान कोई ध्यान होता है? भगवद गीता के 12वें अध्याय में लिखा है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतर दुखम देवद भीरवाप्यते। अव्यक्त निराकार के ध्यान में बहुत बड़ा संकट होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्लेश होता है। शरीर है नहीं तो शरीर बिना शरीर का ध्यान कैसे करेंगे? तो ये सब बातें प्रभुपाद जी लिख के फिर आगे कहते हैं, भक्त भगवान को आसानी से पा सकते हैं। ये भी भगवद गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, मैया आवेश मनो ये वाम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा। तो मैं जिसका मन और बुद्धि मुझ में आविष्ट है, उसको मैं तत्काल संसार सागर से पार कर लेता हूँ। मैं ये मन आधस्व मई बुद्धि निवेश निवेश मई ये ऊर्धव अत ऊर्ध्वम न संशय, वो श्लोक लिखा है प्रभुपाद जी ने। भगवान और भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब इस धरती के ऊपर मानव समाज में रहे, कुरुक्षेत्र में रहे, तो उसको सब महान कह रहे थे। अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं, ऐसे कोई दुनिया में महान आदमी और मरने के बाद उसको भगवान करके पूजा जाए, ये मूर्खता है। भगवान मानव नहीं होते हैं, भले मानव समाज में मानव की तरह लीला करते हैं, तब भी भगवान रहते हैं। मरने के बाद किसी को भगवान करके पूजने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, ये एक गलत प्रथा है। अब भीष्म पितामह का पूर्णाहुति का श्लोक है, तमिमां महामजं शरीर भाजां हृदय हृदय दृष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशम इव नैकार्धकम् एकम् सम्मधिगतोऽस्मि विदुत भेद मोह। तम, तम का मतलब वो जिसकी पूजा राजसूय यज्ञ में हुई थी, जो द्वारका से आए थे। और इमम, अब जो ये मेरे सामने खड़े हैं, वो और ये जो अभी मेरे सामने खड़े हैं, अथवा जो युद्ध भूमि में पार्थ सारथी थे वो, और अब जो श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, अहम अजम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितम, ये पहले से ही मेरे हृदय में मैंने बहुत बड़ा ध्यान करके इसको बिठा दिया है। जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं ना, वो ही ये है। ये जो द्वारका से आया चतुर्भुज जिसको देखते हैं कभी लोग, और ये दो द्विभुज में जो पार्थ सारथी बना हुआ है, बना हुआ था और है आज भी, और ये गोपियों के बीच में श्याम सुंदर है, और सबके हृदय में परमात्मा, ये सब एक है, मैं जानता हूं। अब मुझे कोई भेद नहीं रह गया इसमें, ये तो अजन्मा है। शरीर भाजन का मतलब ये शरीरधारी जो बेचारे अपने कर्मों से शरीर लेना पड़ता है, इसके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में आते हैं। कल्पिता नाम, कल्पिता नाम लोग जो कल्पना करते हैं, जो विचार करते हैं कि ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है और ये भगवान है, ये अलग नहीं है, ये एक है, मैं जान गया। प्रतिदृश्यमेव पर उदाहरण देते हैं, अर्कम, जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन कोई लोग जहां बैठा हुआ देखता है, बोला अभी तो ये तो सुबह उगा है सूर्य, उसी वक्त कहीं दोपहर है, नहीं नहीं ये दोपहर का सूर्य है, नहीं शाम का सूर्य है, तो सूर्य एक है लेकिन लोग उसके अलग अलग गति को देखते हैं, अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, अलग अलग नाम से भी कहते हैं, ऐसे मेरे को अभी कोई भेद नहीं रह गया। समाधिगत अस्मि विदुत भेद मोहा, अब मेरे मन से सब सफाई हो गई, कोई भेद नहीं है। अब यही वो है जो मेरे हृदय में, अब वो एक पार्थसारथी मेरे हृदय में अब परमात्मा की जगह पे ये बैठ गया है, और यही जो मेरे सामने खड़ा है यही मेरे हृदय में बैठा हुआ है, और यही पार्थ की सारथी के रथ के ऊपर बैठा हुआ था। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अब मैं पूर्ण ध्यान के साथ अपने मन को एकाग्र कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो मेरे सामने खड़े हैं। अब मेरे को कोई मोह का भेद नहीं रह गया कि परमात्मा कोई दूसरा होता है या ब्रह्म कोई दूसरा होता है। जैसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं है, वो यही कृष्ण है सब कुछ, यही तो सबके हृदय में रहता है। जैसे सूर्य सबके सर के ऊपर रहता है और हर एक कहता है कि अलग अलग सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य है, इसलिए ये एक ही सूर्य श्री कृष्ण है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान के अलग अलग रूपों के भेद से अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, पवित्र हो गई है, ऊपर उठ गई है। जैसे सूर्य एक होता है ऐसे एक ही भगवान मेरे को दिख रहा है। जो पार्थ सारथी था, जो सारथी था, जो सबके हृदय में परमात्मा है, जो अजन्मा है, जो सारे जीवों के हृदय में बैठा हुआ है, और जीव जो अपना शरीर स्वयं अपने कर्मों से बनाते हैं फिर भी भगवान साथ में सुहृद के रूप में आते हैं, ये सब एक है, मैं जान गया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप सीधा भगवान को कृष्ण ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? आप विजय सखा, विजय रथ कुटम, मे रति अस्तु, चरण रति परमस्य तस्य मे अस्तु, सभवतु मे भगवान गतिर। अब ये श्लोक इन सब बातों का उत्तर दे रहे हैं कि ये सब जिसका नाम लिया वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह पार्थ सारथी से प्रेम करते हैं, उनका आराध्य देव पार्थ सारथी। मुझे मिल गया कौन? तम, वही भगवान मुझे मिल गया जो पार्थ सारथी था, जिसके हाथ में चाबुक था और घोड़े की लगाम थी, वो मेरे हृदय में बसा हुआ है, मैंने बहुत ध्यान करके बसाया है। युद्ध भूमि में नहीं, उससे पहले भी मैं इसी का ध्यान करता था। अब परमात्मा चतुर्भुज मेरे हृदय में नहीं है, मेरे हृदय में तो ये है पार्थ सारथी बैठा हुआ है, ऐसा मैंने पक्का ध्यान लगा रख चुका हूं मैं। यही मेरे आंखों के सामने सदा बसे रहे। ये अजम का मतलब है कि ये अजन्मा है, का मतलब ये निरंतर मेरे नजर के सामने है। इसका अर्थ है ये भगवान तो सभी जीवों के हृदय में बैठे होते हैं, चाहे जीव कोई भाग्यशाली है का या किसी का दुर्भाग्य है, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में होते हैं। और श्रुति का मंत्र भी लिखता है, जीव तो बेचारा अग्नि की चिंगारी की तरह भगवान का एक अंश है, तो वही भगवान द्वारकावासी भी वही है, ब्रजवासी भी वही है, सापार्थ सारथी भी वही है। युधिष्ठर के हृदय में जो भगवान है, जो वासुदेव इसके पिता के हृदय में भगवान है, जो अर्जुन का पार्थ सारथी, जो उद्धव के प्रेम के कारण उसके हृदय में भगवान है, नंद के बाबा के हृदय में जो वात्सल्य प्रेम के कारण भगवान है, ऐसे गोपियों के हृदय में जो प्रेमिका के रूप प्रेम अपने प्रेमी के रूप में भगवान है, एक भगवान है, भगवान दो नहीं है, लेकिन हर एक के साथ उनके प्रेम के अनुरूप ही भगवान उसके हृदय में ज्ञान में प्रकट होते हैं, परंतु मेरा पूर्ण रूप से मन केंद्रित है और मैं आकर्षक हूं पार्थ सारथी में, चतुर्भुज को भी मैं प्रणाम करता हूं, मुझे पार्थ सारथी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है, ऐसा भाव है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण एक है परम पुरुष, वो अनंत अवतार भी लेते हैं, बहुत से रूप भी धारण करते हैं, नाना रूप धारण करते हैं, नाना अवतार लेते हैं, ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान में कोई दो भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, परंतु मूर्ख भगवत गीता में लिखा है अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो, वो मूर्ख ऐसे कहते हैं लेकिन बुद्धिमान ऐसे नहीं सब कहते हैं। जैसे सूर्य एक को सब कहते हैं, नाम अलग लें परंतु सूर्य एक होता है, ऐसे भगवान एक होता है जो सबके हृदय में ब्रह्म ज्योति ज्ञानियों की वही है, परमात्मा योगियों का वही है, भक्तों का भगवान वही है, मैं समझ गया उसमें कोई अंतर नहीं है। विषम पितामह एक महात्मा है, एक महाजन है, और वो निर्णय बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा निर्णय ज्ञानियों को बहुत जन्मों के बाद होता है कि वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सा दुर्लभ। भीष्म देव का आराध्य पार्थ सारथी है, गोपियों का श्याम सुंदर है वृंदावन में, दोनों में कोई अंतर नहीं, उनके भाव के अनुसार उनके साथ ऐसा भगवान लीला करते हैं। और योगियों का परमात्मा भी वही है और ज्ञानियों का ब्रह्म भी वही है, परंतु निराकार में न ब्रह्म है न ज्ञान न परमात्मा है, इसलिए भीष्म देव महाजन है, नए भक्त या बड़े भक्त हैं उनको इनके शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। अब सूत गोस्वामी कहते हैं इस कहने के बाद, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृष्टि भी, इस प्रकार कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना मन, अपनी वाणी, अपनी नजर, दृष्टि वृष्टि भी ही, और सारी उनकी वृत्तियां आत्मने आत्मानम, जो उनका आराध्य देव उनके हृदय में पार्थ सारथी था उसके ऊपर केंद्रित आवेश उसमें पूर्ण रूप से आविष्ट हो गए। सो अंतश्वास और सांस अंदर ले लिया, उपार मत और शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं मर गए, ये शरीर छोड़ के भगवान के नित्य लीला में उसी समय उनके सामने वो रथ का पहिया उठाया हुआ श्री कृष्ण और ये सामने भीष्म खड़े अपने स्वरूप में पहुंच गए। भीष्म देव अपने हृदय में मन वाणी और वृत्ति से भगवान को धारण कर लिया, सांस अंदर लेके शांत हो गए। श्री प्रभुपाद कहते हैं इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, इसके मतलब दर्शन करते हुए उनको हृदय में अपने हृदय में विराजमान कर लिया, मन को केंद्रित कर लिया, और फिर ऐसे करने के लिए भक्ति के नौ रास्ते हैं, प्रभुपाद ने नौ रास्ते लिखे हैं नवदा भक्ति के। और फिर जो भीष्म देव की गति हुई वो गति आज भी भाग्यशाली को भगवत गीता और भागवत के श्रवण से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवत गीता और भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और जो ऐसे गीता आदि नहीं पढ़ता है वो पशु के जीवन जैसा अपने अंत को करता है। उसके उपदान दिखा है, कहां गया भीष्म देव, संपद्यमानानाम अज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुवाते तुष्णिम वयांशीव दीनात्यये। ये जान करके भीष्म पितामह भगवान के ध्यान में तलीन हो गए, ब्रह्मणे निष्कले जो वहां खड़े थे वो पक्षी जैसे चुप हो जाते हैं ऐसे चुप हो गए। पक्षी कब चुप होते हैं? जब दिन खत्म होता है, रात होती है, तो पक्षियों का चिल्लाना बंद हो जाता है। इसको चक्रवर्ती बात कहते हैं। जो अज्ञानी थे वो पक्षियों की तरह समझते हैं, दिन खत्म हो गया तो बस दिन खत्म, नाश हो गया, नहीं दूसरे दिन दिन उगेगा, ये उनको याद नहीं रहता है क्या? तो भीष्म पितामह ब्रह्म में लीन नहीं हुए। ब्रह्म भीष्म पितामह ने भगवान का, पार्थ सारथी का सानिध्य प्राप्त किया। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, भीष्म ने अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी को प्राप्त किया, ब्रह्म में लीन हो गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये तो पक्षी जैसे मूर्ख जो होते हैं कहते हैं दिन दिन खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। भीष्म देव तो आंख बंद किया और युद्ध भूमि में पार्थ सारथी के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मणि निष्कली का एक अर्थ यह है कि कृष्ण जिसको स्वर्ण आभूषण पहने हैं, ब्रह्म कृष्ण है और निष्कली का मतलब स्वर्ण आभूषण। अगर भीष्म को ब्रह्म में लीन किया जाए ये माना जाए तो ये अन्याय हो जाएगा। भीष्म ने तो मांगा था मुझे पार्थ सारथी चाहिए, भगवान ने कहा जो मांगोगे तो मिलेगा, तो फिर भीष्म को वही मिलना चाहिए, ब्रह्म में लीन क्यों होना चाहिए? और अब एक श्लोक और, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत बड़ा है इसके ऊपर। प्रभुपाद इतना लिखते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के वैकुंठ धाम में जहां पार्थ सारथी है वहां चले गए, ये समझना चाहिए। तत्र दुम दुभ्यो ने दुर्देव मानव वादिना संसुत साधो राज्ञाम खापे तो पुष्प वृष्टि भी। फिर तो देवताओं ने और संसार में मानव ने दोनों ने उन्होंने दुबदुबियां बजाई, ढोल बजाए और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। लिखा है कि भीष्म देव का सम्मान मानव समाज में भी था, देव समाज में भी था, क्योंकि देव समाज से वो आए हुए थे। भूर भुव स्व सब लोगों में जहां देवता रहते हैं उन्होंने बड़ा, महाजनों में एक महाजन है नारद ब्रह्मा आदि में, तो उन सब ने ध्यान किया। एक बात सिर्फ हम कहना ये चाह रहे थे, इसमें यहां लिखा है कि भीष्म देव के अंदर जो वसु जो उसके अंदर एक था, वसु के अंश से जो था, वो तो वापस देवलोक चला गया क्योंकि वो देवता है, वसु देवता है। परंतु जो भीष्म देव भगवान का नित्य दास, पार्थ सारथी का उपासक जो नित्य है, वो भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में चले गए। ऐसे लिखा है आगे वाले श्लोक में कि देवता को तब तक अपने कार्य को संभालना होता है जब तक भगवान की इच्छा है। इसके बाद तस्या निरहरणादीने संप्रेतस्य भार्गव युधिष्ठर कार्यत्वा मोर्त्वम दुखितो भवा। हे सौनक ऋषि, भृगुवंशियों में भृगुवंशी, महाराज युधिष्ठर ने उनके अंत्येष्टि क्रिया करवाई और थोड़ी देर के लिए युधिष्ठर शोकग्रस्त हुए। यहां लिखा है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भीष्म देव भगवान का नित्य पार्षद है, परंतु उनमें एक अंश वसु का आया था जो देवलोक से आया था, वो वापस देवलोक चला गया। ऐसे लिखा है, यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारिकारणाम। जब तक किसी को देवता का कार्य करना है, भगवान की इच्छा है, तब तक करना पड़ेगा, ऐसे वेदांत सूत्र है। तो यहां लिखा है संपरेतस्य। संपरेतस्य का मतलब है सम्यक, पूर्ण रूप से, परे परमास्त परमेश्वर को, और प्राप्त्यते, पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त हुए भीष्म पितामह। तो अब अप्रकट लीला में, जो अप्रकट लीला है उसमें भीष्म पितामह पार्थ सारथी के साथ हो गए। यहां इसके बाद सारे जो ऋषि वहां थे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे और जय जयकार करके हरेक अपने अपने आश्रमों में जाने लगे। तुष्टवो रमुन्यो हृष्टा, मुनि तो बड़े संतुष्ट हुए और आनंद में आनंदित हुए। कृष्णम तद गुह्य नाम भी, भगवान श्री कृष्ण के बहुत गुह्य नामों से उन्होंने प्रार्थनाएं की। ततस्ता कृष्ण हृदय, उन्होंने कृष्ण को हृदय में धारण किया। स्वाश्रमाम प्रयोहो पुमा पुना, फिर अपने अपने आश्रमों की तरह श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेकर रवाने हुए। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज वहां से वापस आए और अपने पितामह बड़े पिता धृतराष्ट्र के आज्ञा और अनुमति से हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर बैठे। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विदा लेके कल रवाना होंगे, उसका 10वें अध्याय को कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ओ अभी तक 10 मिनट पड़े। अभी श्लोक है, श्लोक तो आगे भी है एक आधा। हरे कृष्णा, आगे का श्लोक पढ़ लेता हूं क्या लिखा है। तुष्ट मुनियो हरिष्ठा, ये तो हो गया। और इसके बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर आ गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहव्यम पितृत्वं सानित्वायाम आस गंधारीं च तपस्विनीं। ततो उसके उपरांत युधिष्ठिर गत्वा, युधिष्ठिर चले गए किसके सह, कृष्णो भगवान श्री कृष्ण अपने भाइयों के साथ। गजाहव्यम का मतलब हस्तिनापुर, और पितरम सा और अपने पिता जो थे उनसे सांतवायम उनका आशीर्वाद लिया, उनकी अनुमति ली और गंधारी के जाके चरण स्पर्श किए। जो सत्तपस्विनी बड़ी तपस्विनी थी उसका आशीर्वाद लिया और फिर हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर बैठे। यहां लिखा है, अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का पढ़ रहे हैं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवा नमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पित्रा पितामहं विभो। पित्रा अपने ताऊ धृतराष्ट्र च अनुमतः उससे अनुमति लेकर आज्ञा लेकर आशीर्वाद लेकर वासुदेव अनुमोदितो, और भगवान श्री कृष्ण की अनुमोदन, हाँ बहुत अच्छा है आप अब राजा बनो, क्योंकि मैं धर्म स्थापना करके आए थे लेके लिए आया था, आप धर्मराज हैं, आप अब हस्तिनापुर के राजा। चकार राज्यम धर्मेण, फिर धर्म के मार्ग के ऊपर राज चलाने लगे। पितृ पिता महान, जैसे उनके पूर्वज राज चलाते ऐसे राज चलाने लगे। श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए तैयार होंगे। हरे कृष्णा, इस कथा को यहां विराम देते हैं 10वें अध्याय को। 10वें अध्याय में हमारी प्रार्थनाएं तो देर से शुरू होंगी, लेकिन पहले अध्याय का थोड़ा भाव तो देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी एक चीज, कृष्णा प्रभु जी,
हाँ जी, हाँ जी,
ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ना ये आठ श्लोकों में, उसमें गंधारी का लिखा हुआ उन्होंने कि उनका भी कैरेक्टर भीष्मदेव जैसे के तुल्य है, इवन द शी इज नॉट लेस देन भीष्मदेव।
वो एक दिन उसको लिखा है तपस्विनी, सती लिखा है, सती है तपस्विनी, दो शब्द उनके लिए भागवत में आए हैं। वो भी एक कहा जाए कि पतिव्रता नारी के सती थी और कृष्ण के प्रभाव को जानती थी और तपस्विनी थी, बड़ी तपस्या की थी आंखों के ऊपर पंटी बांधने की, और उनके उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया था, भगवान ने वो स्वीकार भी किया था मुस्कुराते हुए। लेकिन गंधारी में भी क्या त्रुटि दोष है वो भी उस पुस्तक में लिखा है, 2:18 वाले में, कि आखिर उसको 100 पुत्रों का मृत्यु का दुख सहना पड़ा, कोई तो कारण होगा। लेकिन वो भी सम्मान है, क्यों उनका जाके प्रणाम करना, सम्मान करना, उसने भी अपने पति के साथ जाके सती हो गई, गंधारी सती हो गई पति के साथ।
वो आगे आता
है। हाँ जी,
विदुर वाले।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत।
हाँ प्रभु जी, आपने बीच में एक बोला था कि ललिता की प्रार्थना जैसे शेरनी का दूध, तो इसको थोड़ा सा प्रभु जी जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें, हम थोड़ा सा इसको समझ नहीं पा रहे इसका मीनिंग क्या है।
इसका मतलब ये है कि गोपी भाव में, गोपी और मंजरी भाव की उपासना इतनी आसान नहीं है कि हर एक आदमी कहे कि हम करेंगे। जैसे शेरनी का दूध कभी मिलता नहीं है देखने को, अब आपने सुना भी नहीं होगा, तो शेरनी का दूध शेर का बच्चा पी सकता है या सोने के बर्तन में रखा जा सकता है, ऐसे लिखा है वहां। इसका मतलब जो ऐसे आचार्यों के, जैसे हमारे गोस्वामियों के अनुयायी बनेंगे, क्योंकि वो तो है शेरनी के बच्चे, वो इस गोपी भाव को के पार्षद हैं, वो कृपा करें तो किसी को मिले, नहीं तो अपने आप। वहां लिखा है, लिखा ये था कि भीष्म पितामह कहता है कोई डेयर भी नहीं कर सकता है, ये इतना साहस नहीं कर सकता है गोपी भाव की बात करने का, क्योंकि ये इतना ऊपर का स्तर है। इसलिए हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, बाहर चाहे गोपी भाव प्राप्त भी हो जाए तो भी बाहर साधक की तरह रहना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ जी
ठीक है।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, ये आप जो वर्ड लेते ना महाजन, इससे क्या तात्पर्य निकलता है महाजन?
वैसे महाजन आजकल तो व्यापारियों को बोलते हैं जो बिजनेस करते हैं। यहाँ 12 महाजन है भागवत में, वो 6 स्कंद में 12 महाजन है, इसका मतलब जो धर्म को जानने वाले। महाजन का मतलब आदमी, महान, महान आदमी, वो जो महान भगवान है, महान उसको और उसकी इच्छा को जान सकते हैं, उनको महाजन कहते हैं।
जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और था, जैसे अर्जुन और ये भीष्म पितामह, गांधारी, ये सब भगवान को जान गए थे कि ये भगवान है, उसी पीरियड में ऐसे और भी थे जो नहीं जान पाए थे, तो भगवान के सामने आने पर भी उनकी उनकी बुद्धि से माया का पर्दा नहीं हटा, भगवान को नहीं जान पाए वो।
भगवान को जानने वाले को उंगलियों में गिनने वाले 10-15 भी नहीं थे उस समय में, बाकी कोई कृष्ण को जान नहीं पाए थे, वो कोई राजा समझते थे, कोई क्या समझते थे, कृष्ण भगवान सामने होते हुए भी जानना बहुत मुश्किल है। भगवान को जानने के लिए भगवान के बारे में किसी महात्मा की कृपा हो और वो सुनाए और विश्वास हो तो ठीक है, वैसे अपने आप भगवान को जानना इतना आसान नहीं।
प्रभु जी, हमारे हमारे सामने कभी भगवान आ गए तो हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे।
अभी आप इसलिए आएंगे नहीं, आप पहचान नहीं पाएंगे, और आते भी होंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए हरे कृष्णा जपते रहिए, जब आप इसके लायक हो जाएंगे, भगवान को पहचानेंगे तब आ जाएंगे। हम तो आपका, हमारे को तो आशा भी नहीं करते हैं, आप आशा कर रहे हैं, हम तो कहते हैं ये तो आशा ही हमारे लिए मुश्किल है।
हरे
कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे साधु प्रभु जी की,
गौर भक्त वृंद की जय। हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, ये 40 में लास्ट की लाइनों में ये लिखा है, श्री भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के संयोज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, यह समत्व पूर्ण आह्लाद की अवस्था है। प्रभु जी ये थोड़ा सा समझा दीजिए,
क्योंकि वहाँ जो शब्द लिखा है कि वो भगवान से एक हो गई, भगवान से एक हो गई, जैसे भगवान कर रहे थे वैसे कर रही थी। तो ऐसे क्या लोग कहते हैं कि जैसे भगवान में मिलके एक हो गए, जैसे मायावादी कहते हैं कि हम भगवान हो गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गोपियां भगवान में भगवान हो गई। हाँ, तो भगवान गोपियां प्रेम में भगवान में तलीन हो गई, भगवान के प्रेम में तलीन हो गई, कृष्ण गोपी नहीं बन गई। वैसे कृष्ण की अभिनय कर रही थी फिर भी गोपी गोपी रही, कृष्ण कृष्ण रहा। तो उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए जैसे लोग कहते हैं हम भी भगवान हो जाएंगे भगवान में मिलकर, जैसे गोपियां भगवान हो गई, ऐसा नहीं समझना चाहिए।